हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 12, 13 एंड 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृंदावनम रम्या काशिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममालम प्रेम पुमर्थो महा, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिच्छताभयम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जो प्रश्न पूछे थे, अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य सेह यत्कार्यम नियमानस्य सर्वथा। अब बताइए कि एक जीव को अपने जीवन में क्या कार्य करना चाहिए और जो म्रियमान अवस्था में जो व्यक्ति है उसे क्या कार्य करना चाहिए, तो उसका तो स्पष्ट उत्तर दे दिया सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक नंबर 5 में। उन्होंने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। जो वास्तव में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए कि वो उस भगवान हरि भगवान श्री कृष्ण की के विषय में श्रवण करें, उनके ही पवित्र नाम का कीर्तन करें, उन्हें ही स्मरण करें, क्योंकि वही कृष्ण सर्वात्मा है, समस्त जीवों के स्वामी है और प्रेम के लक्ष्य हैं। तो इसलिए क्योंकि मैंने अपने पिताजी से एक ऐसा ग्रंथ जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम वो मैंने सुना है, तो मैं वही ग्रंथ आपको सुनाऊंगा, वास्तव में वही श्रवण करने योग्य है। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायन यदनः नादः। तो जो मैं अपने पिताजी वेद व्यास जी से सुना था वो मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि तदहं ते विधास्यामि महापौरिषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान् मुकुंदे मति सति। क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, महापुरुष के भक्त हैं, और आप इस योग्य हैं कि आपको भगवान के इस पवित्र ग्रंथ के विषय में सुनाना चाहिए, क्योंकि भले ही किसी के पास कोई और कितनी ही योग्यताएं हो, यदि वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो भगवान के इन पवित्र शब्दों को समझ सके या श्रवण करने की योग्यता। तो आप तो क्योंकि भगवान के भक्त हो, महापौरुष के भगवान, तो जो ऐसे भगवान के अंदर श्रद्धा रखता है, यस्य श्रद्धतामाशु, आशु मतलब उसी समय तुरंत, स्यान् मुकुंदे मति सति, मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मति उसकी सती हो जाती है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस भगवान के इन शब्द लीलाओं को श्रवण करना है। और मुख से क्या, कर्णों से क्या करना, उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन उनका क्या था, यह श्रोतव्य मथो जप्यम, क्या सुनना चाहिए और क्या जब करना चाहिए। सुनना केवल भागवतम महापुराण चाहिए, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और आगे कहा, एतन्निर्विद्यमानानां इच्छितां मकुतो भयं योगिनां निपनिर्णीतं हरिनामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यम, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं या जो भौतिक इच्छाएं, इच्छताम, जो भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण है, जिन्हें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं उनको, और जो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रख, आत्म संतुष्ट है क्योंकि दिव्य ज्ञान है उनके पास, तो हर प्रकार के लोगों के लिए एक ही काम है, निर्णितम, बड़े बड़े मुनियों ने इस बात का निर्णय दिया है कि उन्हें क्या कार्य करना चाहिए, हरे नामानु कीर्तनम, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। तो इतना सुनने के बाद परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा दुखी हो गए, उनको बहुत ज्यादा दुख होने लगा कि अब भगवान के पवित्र इन कथाओं को श्रवण करने के लिए मुझे भागवत महापुराण को श्रवण करना है, भगवान के इस पवित्र नाम का जप करना है, क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, तो उनको श्रवण करने के लिए तो बहुत समय चाहिए। हाय हाय, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ के कार्यों में गंवा दिया, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया। अब इन 7 दिनों में मेरे पास केवल 7 दिन रह गए हैं, मैं क्या 7 दिन में भागवत महापुराण को श्रवण करूंगा, इतना महान विशुद्ध ग्रंथ है, मैं भला कैसे सुन सकता हूँ इतने थोड़े समय में। वास्तव में हर एक जीव को यह ग्लानी होनी चाहिए कि इतना समय गुजर गया और कृष्ण प्रेम की ओर हमारी उन्नति नहीं हो रही है, भक्ति में हमारी प्रगति नहीं हो रही है, अब तो न जाने कितना थोड़ा समय रह गया है, तो बहुत तीव्रता से पश्चाताप से, हृदय से पश्चाताप होना चाहिए कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से कृष्ण नाम का जप नहीं कर पा रहे हैं कि हम कृष्ण नाम में ही लीन होके कृष्ण के अंदर अपना पूरा का पूरा ध्यान लगा के कृष्ण पवित्र कृष्ण के पवित्र नाम का जप करें या कृष्ण की कथाओं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सदैव दुखी होना चाहिए कि इतना समय तो बीत गया, अब इतने थोड़े समय में कब मेरी मति लगेगी, कब मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा। तो यही उनके विचार आ रहा था मन में परीक्षित महाराज के। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे पास तो समय बिल्कुल भी नहीं है, तो अब इतने थोड़े से समय में मैं क्या कर पाऊंगा, कैसे भागवत महापुराण को श्रवण करके अपने हृदय से मलिनता समाप्त करके कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर पाऊंगा। तो उसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्षैर्हायनैर्यह वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यतः किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः। शब्दात् किम क्या है, प्रमत्तस्य मोहग्रस्त का, बहुभी बहुतों के द्वारा, परोक्षय यानी अनुभव विहीन, हायनय वर्षों तक, इह इस संसार में, यदि कोई इस संसार में बहुत बहुत समय तक जीता है लेकिन वो प्रमत्त है, उसको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं है, तो फिर भले वो 100 साल जीता है या 1000 साल जीता है, किम प्रमत्त बहुभी चाहे लापरवाही में अगर वो प्रमत्त है लापरवाही में, तो 1000 साल जीने से भी क्या लाभ उसका, उसका उसके जीवन का लक्ष्य नहीं पता, चाहे संसार का सब सुख भी प्राप्त करने के लिए वे पूरी जीवन भी स्ट्रगल करता रहे हैं, धन प्राप्त करने के लिए, भौतिक वैभव प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यस्त कर ले, चाहे उसके पास 1000 साल भी हो, लेकिन उसका क्या लाभ, एक क्षण में मृत्यु सर्व हरश्चाहम, भगवान मृत्यु के स्वरूप में उसकी हर एक वस्तु का हरण कर लेंगे, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें जीव को कुछ पता ही नहीं है। परोक्षैर्हायनैर्यह, उसको जब अनुभव ही नहीं है, तो ऐसे जीव का 1000 साल जीना भी बेमकसद है, कोई लाभ नहीं उसका। लेकिन वरम मुहूर्तम विदितम, वो मुहूर्त भी थोड़ा सा समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, वरम है, वो श्रेष्ठ है, यदि विदितम, विदितम मतलब यदि वो चेतन है, यदि वो असावधान नहीं है, यदि उसे अपने लक्ष्य के विषय में पता है, यदि वो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, तो वो मुहूर्त भी, मुहूर्त बहुत छोटा सा समय होता है, कहीं कहीं बताया गया कि 3 घंटे का समय उसको एक मुहूर्त कहा जाता है, हम बोलते ना ये मुहूर्त है, जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है या कोई भी मुहूर्त होता है, तो वो मुहूर्त भी बहुत महत्वपूर्ण है यदि वो विदितम है, यदि वो भगवान कृष्ण के प्रेम में चेतन है, जो परम पुरुष भगवान के लिए प्रेम से चिंतन करते हुए समय बीतता है, वो चाहे कितना भी थोड़ा समय होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यता, श्रेयसे यता मतलब एक क्षण भी करोड़ों गुना बेहतर है उस पूरे जीवन से जो कि ऐसे ही लापरवाही में बीत गया, और वो एक क्षण भी जो गुजर जाता है वो हम करोड़ों रुपए का धन देकर या कुछ भी देकर वापस नहीं ला सकते। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक होगा और उससे कहा जाए कि अभी यदि 12 बज रहे हैं तो मुझे ना वो 11 बजे से लेकर 12 बजे का एक घंटा वापस ला के दो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। कुछ भी हो जाए वो समय वापस नहीं आ सकता जो बीत गया। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी सांत्वना दे रहे हैं कि आप वो वाला समय तो बीत गया, तो उसमें यदि नहीं पता था, लेकिन अब जो आपके पास 7-7 दिन रह गए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही वो करोड़ों वो वाला समय जो बीत गया वो करोड़ों रुपए देकर भी हम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे कितने मुहूर्त तो अभी बाकी हैं। अगर एक खोया हुआ क्षण हम सुमेरु पर्वत जैसे जितना सोना देकर भी वापस नहीं ला सकते हैं, तो वो तो बीत गया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उस समय को देखता है जो अभी है। तो इसका मतलब है इतने सारे सुमेरु पर्वत के जितना सोना देकर जितना समय खरीदा नहीं जा सकता, उससे कई ज्यादा समय तो अभी हमारे पास है। तो जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ये जान ले कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, और उसके लिए मुझे कृष्ण की कथाओं को श्रवण करना है, कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना है, इसी से मुझे कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। तो उस समय को अधिक से अधिक नाम जप में और अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को श्रवण करने में लगाना चाहिए। वास्तव में ये सबसे टॉप क्लास का प्रवचन शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। इससे बढ़कर और किसी शास्त्र में जीव का उद्धार का कोई और मार्ग, सरल मार्ग नहीं बताया गया। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना समय जीव के पास है उतना समय ना भगवान की लीलाओं को, श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण। इसीलिए यहाँ पर करोड़ों करोड़ ऋषि मुनि आकर एकत्रित हुए हैं, किस लिए? शुकदेव गोस्वामी के द्वारा उस प्रवचन को श्रवण करने के लिए, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेय से यथा। यदि वो एक मुहूर्त भी श्रेय के लिए, परम कल्याण के लिए, परम श्रेय के लिए यदि घटता है, तो वो करोड़ों सालों की जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही कोई व्यक्ति हो अपने जीवन में $1,000,000,000,000,000 कमाए, लेकिन ऐसा हो जाए एक समय कि उसका सारा जो धन है वो नाश हो जाए, उसके जीते जी नाश हो जाए, और बस उसके पास अब पॉकेट में जितने पैसे बचे हैं वही हो, यानी कि वो उसका जो महल है उसमें जितने भी धन रखा हुआ है उस सब पे आग लग जाए या कोई चोरी कर ले या सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन उसके पॉकेट में जो 10,000-20,000 पड़े हुए उसके पास तो वही धन है ना, तो उसी को वो यूटिलाइज करे अच्छे तरीके से तो वो उसी से उसको श्रेय प्राप्त होगा। अब हमारे भी जीवन का आधे से ज्यादा समय तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके ऊपर अफसोस करने से बेहतर है कि आज जब हमें पता चल गया है कि भगवान का नाम लेना ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, तो अब जो बच गया है उसका लाभ उठाना चाहिए ना। इसलिए सदैव क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उठते बैठते सोते जाते बस भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इन शब्दों का मुख से उच्चारण होता रहे। ये शब्द जब हमारे मुख से निकलते हैं तो हमारे हृदय को इतना पवित्र कर लेते हैं कि भगवान स्वयं आकर हमारे हृदय के अंदर बैठ जाते हैं। भगवान के नाम में और नामी में कोई फर्क नहीं है, तो साक्षात भगवान के साथ संपर्क कराने वाले ये शब्द हैं। तो अधिक से अधिक उन शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा ये? भगवान के चरणों में प्रेम लगेगा जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। तो जितना भी समय हम निकाल सकते हैं भौतिक कार्यों से, हमें अवश्य उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अवसर मिले और भगवान के पवित्र नाम को जप करने का अवसर मिले। अनुवाद, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया कि भगवान का नाम ही जीव का वास्तविक कल्याण करने वाला है। योगी नाम निपर निर्णीताम हरे नामानुकीर्तनम, ये निर्णय किया गया है कि भगवान का नाम कीर्तन ही जीव का कल्याण कर सकता है। राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बच गए थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण भी जीवन श्रेष्ठकर है। जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन है एवं ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसे पार्श्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीवन को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। श्री राजीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उद्धरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों में किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्वक पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र से श्री राजीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य के सारे पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। मार्कंडीय पुराण से उद्धरण देते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो भगवत भक्त की निंदा करे और ना उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराध ऐसा है जो हमारे समस्त पुण्यों को हरण कर लेता है। एक तो हम अपने जीवन में वैसे इतने थोड़े पुण्य करने का हमें सौभाग्य प्राप्ति नहीं होता और हमने जितनी भी भक्ति की है, जितना भी हमारी भक्ति लता का जो पौधा है थोड़ा बहुत ऊपर उठता है, वो किसी भी भक्त की, चाहे वो उच्च ना, कोई भी साधारण भक्त की भी निंदा यदि हम करते हैं तो बहुत हानि होती है। इसलिए हमें सदैव सावधान रहना चाहिए और बताना चाहिए अगर कोई इस तरह की करता है ऐसे, तो भी हमें ऐसी बातों को श्रवण नहीं करना चाहिए और अगर संभव हो तो उन्हें भी रोकना चाहिए क्योंकि बहुत हानिकारक है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी हमें बार बार सावधान करते हैं कि भगवत भक्त की निंदा करें और उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते हैं। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काट कर उसे निंदा करने से रोके और यदि ऐसा ना कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की उपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को ना तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए ना किसी को ऐसा करने देना चाहिए। जहां तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, दूसरा अपराध है भगवान के नाम को देवताओं के नाम के बराबर समझना। तो श्रील प्रभुपाद जी उसके विषय में बताते हैं, प्रकट शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता 10.41 ये बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। यत्यत्विभूतिमत्सत्वम्
श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभव।
तो भगवान कहते हैं चाहे कितने भी विभूति, कितने ही बड़े बड़े आश्चर्यमय या बहुत ही श्रीमद लोग हों या व्यक्ति हों या देवता हों, वो सब क्या है, मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज के एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी सफुलिंग मात्र है। तो यहाँ पर अगर हम उनके साथ भगवान का तुल्यात्मिक दृष्टि से उनको देखते हैं, भगवान के नाम के बराबर किसी देवता के नाम को या किसी जीव के नाम को करते, तो बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी ना तो परम भगवान की शक्ति से अधिक शक्तिमान या उसके तुल्य है। अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्रोतों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य किसी नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी भी परम भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पाप के प्रभावों से उभार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग उनके कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करें। जीवन का ऐसा कार्य भले ही वह एक क्षण का क्यों न हो, उसकी तुलना अज्ञानमय दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना ही हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे वृक्ष तो हजारों साल देते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनकी आयु बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या लाभ उस जीवन का जिस जीवन में कोई भगवत स्मृति नहीं है, कोई भगवान के साथ प्रेम नहीं है, भगवान को के धाम में जाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। लेकिन ऐसा चाहे कितना ही बड़ा, आज हम देखते हैं जीव, आज का जीव जो है वो अधिक से अधिक आहार निद्रा बाई मैथुन बस इस पशुमय जीवन में गुजारना अपने जीवन का लक्ष्य समझता, ज्यादा से ज्यादा भौतिक वासनाएं पूरी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति होनी चाहिए, बस इसी में जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन ऐसा जीवन यदि किसी को हजारों साल तक जीने के लिए मिलता है तो भी उसका क्या लाभ। लेकिन यदि किसी के पास थोड़ा सा समय भी है और वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवत प्रीति को बढ़ाने के लिए, भगवान के पवित्र नाम को जप करने में वो समय बिताता है, तो वो समय उस हजारों साल की आयु से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा सुना तो परीक्षित महाराज को बहुत उत्साह हुआ। फिर भी उनको लग रहा था कि इस थोड़े से समय में क्या भगवान की कथाओं को सुन सकूंगा, थोड़ी सी जिंदगी बच गई, 7 दिन के लिए मुझे अब इस थोड़े से समय में मैं क्या करूं, क्या कर सकूंगा। तब बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, बहुत ही सुंदर है। वे कहते हैं खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं।
तो बताते हैं कि नहीं महाराज, आपके पास कम समय नहीं है। मैं आपको बताऊं, त्रेता युग में पहले एक राजा थे जिनका नाम था खटवांग। खटवांग राजा सूर्यवंश के राजा थे, श्री रामचंद्र के वंश के थे वे। और वो बहुत ही पराक्रमी थे, इतने प्रतापी राजा थे कि देवताओं को कभी युद्ध करना पड़ा और देवताओं ने इस परम प्रतापी राजा खटवांग से सहायता ली। देखो यहाँ से ही हमें समझना चाहिए कि मनुष्य यदि चाहे तो वो देवताओं से भी बढ़कर प्रतापी हो सकता है। देवताओं को भी पहले ऐसा होता था, देवताओं को भी यदि मतलब आवश्यकता पड़ती थी तो पृथ्वी के प्रतापी राजाओं को बुलाते थे कि भैया आप आइए, हमारी सहायता कीजिए। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे महाराजा खटवांग का है और दूसरे महाराजा मुचकंद को भी बुलाया था। तो यहाँ पर महाराजा खटवांग को देवताओं ने बुलाया कि आप आइए, हमारी सहायता कीजिए। तो बहुत समय तक उन्होंने युद्ध किया और अंततः देवताओं की विजय हुई। देवता महाराजा खटवांग से बहुत ज्यादा प्रसन्न है और उन्होंने पूछा कि हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं, आप बताइए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सालों तक स्वर्ग में ना आनंद प्रदान कर सकते हैं, और भी आपकी जो भी इच्छा है वो सब हम पूरी कर सकते हैं, सिवाय मृत्यु से आपको नहीं बचा सकते, लेकिन आप अगर चाहें तो हम आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। तो बोला, आयु बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, क्या मेरी आयु समाप्त हो गई है, आप मुझे ये बताइए मेरी आयु कितनी बची है। तब देवताओं ने बताया कि आपके पास अब सिर्फ एक मुहूर्त की आयु बची है। मुहूर्त, एक मुहूर्त मतलब 3 घंटे की आयु बाकी बची है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी आयु को बढ़ा सकते हैं और स्वर्ग में आप कितना भी समय रहना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुखपूर्वक जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो बोला, अंत में क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं बहुत समय तक रहूंगा तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपको पुनः पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग से भगवान के धाम तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, पहले पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो बोला, फिर यहाँ पर हजारों साल तक मैं मजे करता रहूं, पृथ्वी पर वापिस जाऊं, तो इससे बेहतर है मैं अभी पृथ्वी पर जाकर अपना ये समय जो मेरे पास है उसको सार्थक करना चाहता हूँ। अगर आप लोग वाकई में मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कुछ ऐसा विमान दीजिए, कोई ऐसा विमान जो बहुत तेज चलता हो। तो बोला, आप इतना तेज विमान में बैठकर कहाँ जाना चाहते हो, मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ स्वर्ग में बहुत रजोगुण है, स्वर्ग में भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया जा सकता है, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हर समय राज भोग और काम ये सब बहुत कुछ है। तो उन्होंने बोला कि मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पर श्री राम के चरणों के प्रताप से बहुत सुंदर वातावरण है जिसमें जीव का मन टिकेगा भगवान के नाम में। तो फिर बोला, मुझे कोई बहुत ही तेज, उनको विमान दिया गया, बहुत तेज चलता था, एक क्षण में वो अयोध्या में पहुंच गए, स्वर्ग से अयोध्या तक आए और 3 घंटे थे उनके पास, और 3 घंटे में भगवान का ध्यान किया, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान के पवित्र नाम को जपते रहे, हृदय के अंदर कोई आसक्ति नहीं थी, कोई भी आसक्ति मन में बाकी नहीं बचाई। जैसे यहाँ पर बताया, खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग नाम का एक राजर्षि, ज्ञात्वे यत्ता में हायुषा, जब उनको ये पता, ज्ञात्वे जानकर, इत्ताम अवधि इहायुष, इस संसार में अपने जीवन की अवधि जब उन्हें पता चली कि कितनी है, मुहूर्त, सिर्फ एक ही मुहूर्त रह गया है, तो उसने क्या किया, सर्वम उत्सृज्य, अपना सब कुछ छोड़ दिया, किसी भी भौतिक वस्तु में कोई आसक्ति नहीं रखी, और गतवान, स्वीकार किया अभयम, पूरी तरह से सुरक्षित, जहां पर कोई भय नहीं। इस भौतिक जगत में भक्तों, यदि हमें बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए तो भी भय समाप्त नहीं होता, लेकिन भगवान का धाम अभय है, अभयम हरिम, भगवान को, वो भगवान जिनके धाम तक पहुंचने के बाद कोई भी भय नहीं रहता, वापिस आने का। भगवान कहते हैं यत कत्वा नानिवर्तन्ते तत् धाम परमम महा। तो ऐसे धाम को उन्होंने केवल तीन घंटे में, एक मुहूर्त में उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने ध्यान किया, भगवान के पवित्र नाम का जप किया और कुछ ही समय में, तीन घंटे के उपरांत एक बहुत ही भव्य विमान आया और वो विमान उनको स्वर्ग से गुजार कर भगवान के धाम तक लेके गया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि स्वर्ग से पहले पृथ्वी पर आएंगे। स्वर्ग से भगवान के धाम का रास्ता नहीं है, परंतु पृथ्वी से, ये पृथ्वी जो है वो एक एयरपोर्ट है जहां पर भगवान के धाम का विमान रुकता है और हम वहां पर जा सकते हैं। क्यों, कैसे जा सकते हैं, जब हम पृथ्वी पर वो कार्य करेंगे। जैसे बताया गया, यस्यैव हेतु प्रियते कोविदु न लभ्यते यद् भ्रमताम उपर्यद। वो जगह जहाँ पर, जिस जगह को प्राप्त करने के लिए ऊपर के लोग भी आपको काम नहीं आएंगे, नीचे के लोगों में रहकर भी नहीं, लेकिन पृथ्वी पर रहकर यदि हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो हम उस लोक को जहाँ से वापस आना नहीं पड़ता है, उस भगवान के लोक को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर महाराजा खटवांग के विषय में बताया कि उन्होंने इतने थोड़े समय में भी भगवत प्राप्ति कर ली थी। तो आगे बताया, अनुवाद देखिए, राजर्षि खटवांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण यानी मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। हमारे जीवन का वास्तविक कर्तव्य है सवै पुंसम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षरे। तो उस कर्तव्य का श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें भान होना चाहिए, भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। तुरंत आवश्यकता है, मतलब आज बस रोटी कपड़ा और मकान यदि प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका, आप जो है ना, सब कुछ प्राप्त हो गया। बस मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खटवांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व तो होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। यही हाल महाराज युधिष्ठिर का था तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का भी था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण उदाहरण रूप आदर्श व्यक्ति थे। महाराज खटवांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए युद्ध किया था। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खटवांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतः उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन की अवधि के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के फेर में ना थे क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्ग लोक को छोड़ दिया और जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से परिपूर्ण है, और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। वे अपने महत्व प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित को महान सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहन किया गया, यद्यपि उनके जीवन के साथ ही दिन शेष है जिसमें उन्हें श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को तुरंत ही सुखदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोष वे अपने पीछे छोड़ गए उसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में सुंदर ढंग से हुआ है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से क्या कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, खटवांग महाराज के पास तो केवल एक मुहूर्त था, केवल 3 घंटे थे और आपके पास तो सफिशियंट समय है, आप कुछ भी चिंता ना कीजिए। वे कहते हैं श्लोक नंबर 14, तवाप्येतहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्संपरायिकं तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्संपरायिकं तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्संपरायिकं तवापय यानी तव यानी तुम्हारे अपि भी एतर ही अतेव कौरव हे कुरुवंशी सप्ताहम पूरा पूरे 7 दिन है, पूरा 1 हफ्ता है आपका जीवितावधि, आपके पास आयु आपकी जीवन की अवधि जो है वो 7 दिन अभी तक शेष है। उपकल्पया इसलिए संपन्न करो, वही कार्य कंप्लीट करो। उपकल्पया मतलब अब आपको कंप्लीट करना चाहिए, तत् सर्वम वो सारे कार्य कंप्लीट करने चाहिए, तावत जब तक यत जो है सांपरायिकम अगले जीवन के लिए अनुष्ठान, यानी कि जो अब अगले जीवन को सदगति प्रदान करने के लिए जो भी कार्य हैं उन सारे कार्यों को आप यहाँ पर संपन्न कर सकते हो। आपके लिए आपके पास अभी बहुत समय है, 7 दिन बहुत ज्यादा हैं, 1 सप्ताह हमें आप अपने मन को भगवान के चरणों में एकाग्र कर सकते हो, तो अभी तो आपके पास 7 दिन हैं, तो इसीलिए 7 दिन में वो सारे कार्य करो। उपकल्प्य तत्सर्वम वो सारे काम कम्प्लीट करो। तो मनो परीक्षित महाराज बोले और क्या क्या काम करने पड़ेंगे, अभी और क्या चीजें हैं, तावत यत सांपरायिकम वो सारे साधन क्या हैं आप बताइए। तो बोलते नहीं नहीं अब आपको कुछ नहीं करना है महाराज, कुछ आपको जो करना था वो कर दिया, मतलब एक शुद्ध वैष्णव की शरण में आकर कथा श्रवण करने का प्रयास करना होता है, बस यहाँ तक आप पहुँच गए। अब सारा का सारा उनको है वो जो वैष्णव का प्रताप है, बस वो कहते जाएंगे आपका होता जाएगा, जो कथा हम श्रवण करते जाएंगे। तो मतलब वो कह रहे हैं कि अब आप इन 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने के लिए तैयार हो जाए। सुनना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में। यहाँ पर महाराज परीक्षित को अभी सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कहेंगे कि आप यज्ञ की तैयारी कीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। सुनने के समान और कोई भी तपस्या नहीं, यज्ञ नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे अब यज्ञ करने जाओ तपस्या करने जाओ, नहीं, आप यहाँ पर बैठ के केवल कथा सुनो, अपना परलोक सुधारने के लिए भगवान की कथाओं से को श्रवण करने के बराबर और कोई पुण्य नहीं है। इसलिए महाराज परीक्षित के पास क्योंकि 7 ही दिन है तो सुखदेव गोस्वामी उन्हें केवल भागवतम महापुराण को श्रवण करने की विधि या श्रवण करने की सलाह दे रहे हैं। अनुवाद देखिए, हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो
आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराजा खटवांग जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष हैं, अतएव वे अगले जीवन को की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग सरलता से कर सकते हैं। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष हैं और इस प्रकार से वे मुक्त हो लें। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया था, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका उपदेश आगे दिया जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अत्यंत ही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की इन कथाओं को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है इस जीवन में, और यही तैयारी है अपने गोलोक धाम में जाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवाओं को अच्छी तरीके से कर सकूं, अपनी साधना को परफेक्टली कर सकूं। हरे कृष्ण।